एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो आजकल की डिजिटल दुनिया की एक बहुत बड़ी और मतलब बढ़ती हुई चुनौती पर रोशनी डालती है। ये किताब है फेक फोटोज और इसके लेखक है हानी फरीद। हम सब तस्वीरों और वीडियो से घिरे हुए हैं, लेकिन क्या हम सच में भरोसा कर सकते हैं जो हम देख रहे हैं?
बिल्कुल, ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सोशल मीडिया फीड्स हैं, न्यूज रिपोर्ट्स हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स तो हैं ही, हर तरफ विजुअल कंटेंट है, पर इसमें कितना असली है और कितना नकली ये पहचानना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है।
हाँ बिल्कुल,
तो ये किताब इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करती है और बताती है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सच्चाई की समझ, हमारे भरोसे और यहाँ तक कि हमारे समाज और लोकतंत्र पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है।
तो इसे समझना हम सबके लिए जरूरी है।
हाँ,
तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हानी फरीद हैं कौन। वे सिर्फ एक लेखक नहीं हैं, बल्कि डिजिटल फोरेंसिक यानी डिजिटल दुनिया की जासूसी,
हाँ जासूसी कह सकते हैं,
मीडिया में हेरफेर और इमेज एनालिसिस के क्षेत्र में दुनिया के जाने माने विशेषज्ञ हैं।
हाँ, और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, वे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में प्रोफेसर तो हैं ही, लेकिन उन्होंने डिजिटल रूप से बदली गई तस्वीरों और वीडियो का पता लगाने वाली मतलब शुरुआती तकनीकें बनाने में अहम भूमिका निभाई है।
अच्छा,
उनका काम बहुत प्रैक्टिकल रहा है, सरकारी एजेंसियों के साथ, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यहाँ तक कि अदालतों में बतौर एक्सपर्ट गवाह भी उन्होंने काम किया है।
अरे वाह।
हाँ, उन्हें दुनिया के टॉप डिजिटल जासूसों में गिना जा सकता है,
और यही बात उन्हें इस विषय पर लिखने के लिए खास बनाती है ना?
हाँ बिल्कुल, उनके पास गहरी तकनीकी समझ भी है और वे समाज पर इसके असर को भी बहुत साफ देख पाते हैं।
और वो सिर्फ समस्या नहीं गिनाते,
नहीं,
समाधान की तरफ भी इशारा करते हैं।
अच्छा,
तो ये किताब फेक फोटोज आखिर है किस बारे में?
आसान शब्दों में कहें तो ये तस्वीरों और वीडियो के जरिए होने वाले धोखे का इतिहास, आज के हालात और आने वाले खतरों पर एक जरूरी गाइड है। फरीद का मकसद है नकली तस्वीरों के पीछे की तकनीक को आसान बनाना, उसे इतिहास के संदर्भ में रखना और हमें मतलब इस खतरे से निपटने के लिए तैयार करना।
और ये किताब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, है ना?
नहीं बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो सच पर टिके समाज की परवाह करता है।
किताब हमें एक सफर पर ले जाती है 19वीं सदी के डार्क रूम से लेकर आज के एआई युग तक। ये दिखाती है कि तस्वीरों से छेड़छाड़ कोई आज की बात नहीं है।
हाँ, ये दिलचस्प है।
सोचिए, स्टालिन ने अपने विरोधियों को तस्वीरों से गायब करवाया, और अब्राहम लिंकन की एक मशहूर तस्वीर में भी उनका सिर किसी और के धड़ पर लगाया गया था। मतलब हेरफेर हमेशा से होता आया है।
बिल्कुल, फिर किताब डिजिटल दौर में आती है। फोटोशॉप ने कैसे इमेज मैनिपुलेशन को आम बना दिया।
हाँ वो तो है,
और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जमाना है। फरीद बहुत सरल तरीके से समझाते हैं कि GANs, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स जैसी तकनीकें कैसे काम करती हैं।
GANs ये वही हैं जो डीप फेक बनाती हैं।
हाँ बिल्कुल, ये वो तकनीकें हैं जो डीप फेक बनाती हैं, यानी ऐसे नकली चेहरे, लोग, जगहें या घटनाएं बना सकती हैं जो कभी थे ही नहीं, पर दिखते बिल्कुल असली हैं।
बाप रे।
तकनीक समझाने के बाद किताब उन गंभीर सामाजिक परिणामों पर फोकस करती है जो शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं।
जैसे
कैसे नकली तस्वीरें और वीडियो राजनीतिक माहौल बिगाड़ सकते हैं, हिंसा भड़का सकते हैं, लोगों की इज्जत उछाल सकते हैं, खासकर महिलाओं को निशाना बनाकर नकली पोर्नोग्राफी बनाना।
हाँ वो बहुत भयानक है।
बिल्कुल, और कैसे कंपनियों को भी धोखा दिया जा सकता है। और यहीं पर फरीद एक बहुत जरूरी और खतरनाक विचार सामने रखते हैं, लायर्स डिविडेंड।
लायर्स डिविडेंड यानी झूठे का लाभांश।
हाँ, झूठे का लाभांश, ये वाला हिस्सा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इसका मतलब है कि जब इतनी सारी नकली चीजें घूमने लगें, तो लोग असली सबूतों पर भी शक करने लगते हैं। कोई भी असली वीडियो दिखाकर उसे भी फेक कहकर खारिज किया जा सकता है।
अच्छा,
सोचिए, इसका मतलब यह है कि भविष्य में किसी अपराध का वीडियो सबूत भी आसानी से फेक कहकर खारिज किया जा सकेगा।
तो फिर न्याय कैसे होगा?
बिल्कुल, इससे न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठ जाएगा।
ये तो बहुत खतरनाक बात है, लेकिन क्या किताब सिर्फ खतरा बताकर छोड़ देती है? मतलब कोई उम्मीद है?
नहीं, यही फरीद की खासियत है, किताब निराशा में खत्म नहीं होती, आखिर में वे समाधानों पर जोर देते हैं।
वो मानते हैं कि कोई एक जादुई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी जो सब ठीक कर देगी।
अच्छा, बल्कि हमें कई स्तरों पर काम करना होगा, बेहतर डिजिटल फोरेंसिक तकनीकें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ज्यादा जिम्मेदारी,
हाँ ये जरूरी है,
सोच समझकर बनाए गए कानून, और सबसे जरूरी हम सब में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और मीडिया साक्षरता को बढ़ाना होगा।
मतलब हमें खुद ज्यादा जागरूक और सवाल पूछने वाला बनना होगा।
एग्जैक्टली।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। किताब की शुरुआत ही इस पुरानी कहावत को चुनौती देती है कि देखना ही विश्वास करना है।
हाँ, सीइंग इज बिलीविंग। फरीद कहते हैं कि फोटोग्राफी शुरू से ही सिर्फ सच्चाई दिखाने का जरिया नहीं रही, इसमें हमेशा हेर फेर और अलग अलग मतलब निकालने की गुंजाइश रही है।
और हमारी आदत है कि हम आंखों देखी चीज पर आसानी से यकीन कर लेते हैं।
बिल्कुल, पर आज की तकनीक इतनी ताकतवर हो गई है कि वो बड़ी सफाई से नकली चीजें बना सकती है। इस भरोसे और तकनीक के बीच की खाई खतरनाक होती जा रही है। और ये धोखा सिर्फ डिजिटल नहीं, बहुत पुराना है, पिक्सल आने से बहुत पहले का।
जैसे वो 19वीं सदी की स्पिरिट फोटोग्राफी, वो भूतों वाली तस्वीरें।
बिल्कुल, जिसमें फोटोग्राफर डबल एक्सपोजर वगैरह से तस्वीरों में भूतों को दिखाते थे और अक्सर दुखी लोगों को निशाना बनाते थे।
अच्छा।
या फिर 1917 का वो कॉटिंगली फेरीज वाला किस्सा याद है?
हाँ हाँ, वो परियों वाला।
हाँ, दो बच्चियों ने कार्डबोर्ड कटआउट से परियों के साथ तस्वीरें खींची और सर आर्थर कॉनन डॉयल जैसे होशियार लोग भी झांसे में आ गए। सोचिए,
कमाल है। और राजनीतिक हेरफेर तो खैर हमेशा से ही चलता आया है। स्टालिन का अपने दुश्मनों को तस्वीरों से मिटा देना।
हाँ, वो तो क्लासिक उदाहरण है, और उसे फोटोशॉप की जरूरत नहीं पड़ी, एयरब्रश और डार्करूम काफी थे।
सही बात है।
यहाँ तक कि अब्राहम लिंकन की एक जानी मानी तस्वीर में उनका सिर जॉन सी काल्हून नाम के किसी दूसरे नेता के ज्यादा दमदार दिखने वाले शरीर पर लगाया गया था।
क्या बात कर रहे, लिंकन की तस्वीर में भी।
हाँ, तो मुद्दा ये धोखा देने या अपनी छवि गढ़ने की इच्छा पुरानी है, बस औजार बदल गए हैं और अब वो औजार ज्यादा खतरनाक हो गए।
फिर आया फोटोशॉप का दौर, डिजिटल डार्क रूम।
हाँ,
इसने इमेज मैनिपुलेशन को कुछ एक्सपर्ट्स के हाथों से निकालकर आम लोगों तक पहुंचा दिया।
सही का, क्लोनिंग, स्प्लाइसिंग, रीटचिंग, ये सब आम शब्द बन गए।
इससे पत्रकारिता और कानून के लिए नई चुनौतियां खड़ी हुई,
क्योंकि अब तस्वीरों की सच्चाई पर सवाल उठने लगे।
बिल्कुल, इसी वजह से डिजिटल फोरेंसिक यानी डिजिटल सबूतों की जांच के तरीकों की जरूरत पड़ी।
और अब हम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में है। फरीद यहाँ गैंस को बड़े अच्छे से समझाते हैं।
हाँ, वो कला जालसाज और कला समीक्षक वाली उपमा बहुत अच्छी है।
कैसे, जरा बताइए।
मतलब एक AI जेनरेटर, वो नकली तस्वीरें बनाता है। दूसरा AI डिस्क्रिमिनेटर, वो पकड़ने की कोशिश करता है कि कौन सी असली है और कौन सी नकली।
अच्छा, तो ये आपस में मुकाबला करते हैं? हाँ, वे एक दूसरे से सीखते हैं, और इस मुकाबले में जालसाज मतलब जेनरेटर इतना माहिर हो जाता है कि उसकी बनाई नकली चीजें असली जैसी लगने लगती हैं।
तो ये डिस्क्रिमिनेटर असल में AI को ही ट्रेन कर रहा है बेहतर झूठ बोलने के लिए।
एक तरह से हाँ, ये एक दूसरे को बेहतर बनाते जाते हैं, लेकिन नतीजा ये होता है कि नकली बनाने वाला AI अविश्वसनीय रूप से अच्छा हो जाता है।
और इसी से डीप फेक बनते हैं।
हाँ, इसी तकनीक से डीपफेक बनते हैं, जहां किसी का चेहरा वीडियो में किसी और के शरीर पर लगाकर उसे कुछ भी बोलते या करते हुए दिखाया जा सकता है। लेकिन खतरा सिर्फ डीपफेक तक नहीं है, AI ऐसे लोगों की तस्वीरें बना सकता है जो दुनिया में हैं ही नहीं।
ओह।
आपकी कुछ सेकंड की आवाज से आपकी पूरी आवाज की नकल बना सकता है, या आपके लिखने के स्टाइल में टेक्स्ट लिख सकता है।
तो फिर इन डिजिटल जासूसों का काम क्या है? हानी फरीद जैसे लोग इन्हें पकड़ते कैसे हैं?
फरीद बताते हैं कि वे नकली चीजों के छोड़े गए बहुत बारीक सुराख या डिजिटल फिंगरप्रिंट ढूंढते हैं।
जैसे?
जैसे रोशनी और छाया में गड़बड़ी देखना। AI अक्सर भौतिकी के नियम, जैसे रोशनी कैसे पड़ती है, ठीक से नहीं समझ पाता।
अच्छा, तो वहां गलतियां पकड़ में आ सकती हैं।
हाँ, फिर डिजिटल कंप्रेशन के पैटर्न देखना, बायोलॉजिकल संकेत देखना।
बायोलॉजिकल संकेत मतलब?
जैसे वीडियो में किसी के पलक झपकने की दर अजीब हो, या त्वचा के रंग में होने वाले हल्के बदलाव जो नब्ज बताते हैं वो गायब हों।
अरे वाह।
और यहाँ तक कि AI मॉडल के खुद के बनाने के तरीके में कुछ खास पैटर्न होते हैं, उन्हें पहचानना। ये बनाने वाले और पकड़ने वाले के बीच लगातार चूहे बिल्ली का खेल है।
तो एक तो ये रेस है जो कभी खत्म नहीं होगी शायद।
बिल्कुल।
और इसका समाज पर असर, वो शायद सबसे डरावना हिस्सा है।
बिल्कुल। पहला तो है दुष्प्रचार और राजनीतिक अस्थिरता। फेक न्यूज, नकली तस्वीरें, डीप फेक वीडियो, इनका इस्तेमाल चुनावों को प्रभावित करने, नफरत फैलाने, दंगे भड़काने में हो सकता है।
जरा सोचिए, किसी बड़े नेता का युद्ध की घोषणा करते हुए डीप फेक वीडियो आ जाए तो क्या होगा?
हाँ, या किसी उम्मीदवार का चुनाव से ठीक पहले कोई झूठा कबूलनामा।
और व्यक्तिगत स्तर पर?
व्यक्तिगत मानहानि और उत्पीड़न, खासकर महिलाओं के खिलाफ, डीप फेक का सबसे ज्यादा दुरुपयोग उनकी मर्जी के बिना नकली पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाने में हो रहा है।
उफ, ये तो भयानक है।
बहुत। इसके अलावा वित्तीय धोखाधड़ी, किसी सीईओ की आवाज की नकल करके कर्मचारी से पैसे ट्रांसफर करवा लेना, ऐसे केस हो चुके हैं।
और फिर वही लायर्स डिविडेंड।
हाँ, यानी झूठे का लाभांश। फरीद बार बार कहते हैं कि सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि लोग नकली पर यकीन कर लेंगे, बल्कि ये कि वो असली पर यकीन करना छोड़ देंगे। जब हर चीज फेक हो सकती है तो असली सबूत की क्या कीमत रह जाएगी।
ये तो सच और भरोसे की नींव पर ही हमला है।
बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालें तो पहली शायद यही है कि धोखा पुराना है, बस तकनीक नई और ज्यादा खतरनाक हो गई है।
हाँ, तस्वीरों से छेड़छाड़ तो हमेशा से होती है ये।
हमारे यहाँ भी शादियों की एल्बम से लेकर राजनीतिक पोस्टरों तक थोड़ा बहुत हेर फेर चलता रहा है ना? लेकिन AI ने इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है।
दूसरी अहम बात यह है कि नकली बनाना आसान होता जा रहा है, जबकि उसे पकड़ना मुश्किल। वो असमरूपता वाली बात।
असमरूपता, हाँ। सोचिए व्हाट्सएप पर कोई झूठी खबर या तस्वीर कितनी तेजी से फैलती है।
और उसकी सच्चाई पता करने और उसे रोकने में कितनी ज्यादा मेहनत लगती है, ये खाई चौड़ी होती जा रही है।
तीसरा, लायर्स डिविडेंड। असली पर अविश्वास सबसे बड़ा खतरा है। भारत में भी हम देखते हैं, किसी नेता या सेलिब्रिटी का कोई वीडियो आता है तो तुरंत पार्टियां या सपोर्टर उसे फेक या डॉक्टर्ड कह देते हैं।
हाँ, चाहे वो असली ही क्यों ना हो।
बिल्कुल, इससे सबूत का महत्व कम होता है।
चौथा, धोखे का लोकतंत्रीकरण, यानी अब कोई भी फेक बना सकता है। पहले इसके लिए खास स्किल और महंगे सॉफ्टवेयर चाहिए थे,
और अब
फोन पर कई ऐप्स हैं जो आसानी से डीप फेक या फोटो मैनिपुलेशन कर सकती हैं। इससे खतरा हर किसी तक पहुंच गया है।
और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, सिर्फ टेक्नोलॉजीज का हल नहीं है, एक मिलीजुली रणनीति चाहिए।
हाँ, बेहतर डिटेक्शन टूल जरूरी हैं, पर साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार बनाना होगा।
सही कानून बनाने होंगे।
हाँ, जो गलत इस्तेमाल रोकें पर अभिव्यक्ति को ना दबाएं। और सबसे बढ़कर स्कूलों से लेकर समाज तक मीडिया साक्षरता बढ़ानी होगी।
हमें सीखना होगा कि जानकारी को कैसे परखें।
बिल्कुल।
फरीद की किताब में कई बातें हैं जो दिमाग में रह जाती हैं। कुछ खास कथन अगर याद करें।
हाँ, जैसे उनके विचारों का सार निकालें तो, पहला, नकली फोटो बनाने के औजार भले ही नए हों, पर धोखा देने की नीयत पुरानी है। स्टालिन को दुश्मनों को इतिहास से मिटाने के लिए फोटोशॉप नहीं चाहिए था, एयरब्रश काफी था। हम इरादे की क्रांति नहीं, बल्कि पैमाने, गति और सफाई में एक खतरनाक उछाल देख रहे हैं।
हाँ, ये ऐतिहासिक जुड़ाव जरूरी है। और ये वाली बात भी बहुत गहरी है टू। डीप फेक का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि लोग झूठ पर यकीन कर लेंगे, बल्कि ये कि वो सच पर यकीन करना छोड़ देंगे। यही लायर्स डिविडेंड है। ये सबूत की अवधारणा पर ही हमला है।
और समाधान पर उनका नजरिया।
3, हम सिर्फ तकनीक के भरोसे समस्या से नहीं निपट सकते। हर नई पकड़ने वाली तकनीक के जवाब में उससे बचने वाली और चालाक बनाने वाली तकनीक आ जाएगी। तकनीक समाधान का हिस्सा है, पर आखिरी बचाव शिक्षा, जागरूकता और आलोचनात्मक सोच में है।
यानी इंसान का रोल सबसे अहम है।
और ये मनोवैज्ञानिक पहलू भी गौर करने लायक है।
4, हम देखना ही विश्वास करना है वाले युग से विश्वास करो फिर देखो वाले युग में आ गए हैं।
आजकल का मीडिया, खासकर सोशल मीडिया एल्गोरिदम, हमें वही दिखाता है जो हम पहले से मानते हैं।
कन्फर्मेशन बायस।
हाँ, इससे हम उस हेर फेर के प्रति और ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं जो हमारी सोच से मेल खाता हो।
सही बात है। सबसे पहले तो फरीद कहते हैं एक सहज संदेह, यानी थोड़ा रुक कर सोचने की आदत डालनी होगी।
मतलब तुरंत फॉरवर्ड ना करें।
बिल्कुल। कोई भी चौंकाने वाली, भड़काने वाली तस्वीर या वीडियो देखकर तुरंत यकीन करने और फॉरवर्ड करने के बजाय एक पल रुकें। फरीद का पॉज मेथड यहाँ काम आ सकता है।
पॉज, वो क्या है?
पी, प्रोब, स्रोत की जांच करें। ये जानकारी कहाँ से आई? क्या भेजने वाला या प्लेटफॉर्म भरोसेमंद है?
अच्छा।
ए, एनालाइज, तस्वीर या वीडियो का विश्लेषण करें। क्या कुछ अजीब लग रहा है? रोशनी, परछाई, किनारे, क्या चेहरे पर भाव ठीक हैं? यू, अंडरस्टैंड, संदर्भ समझें। क्या ये पूरी कहानी है या काट छाट कर दिखाया गया हिस्सा?
सही।
एस, सर्च, पुष्टि खोजें। क्या और भरोसेमंद जगहों पर भी यही खबर है? रिवर्स इमेज सर्च करके देखें कि तस्वीर पहले कहां इस्तेमाल हुई है।
ओके। और ई,
इवैल्यूएट, अपनी भावनाओं का मूल्यांकन करें। क्या ये आपको जानबूझकर गुस्सा, डर या हमदर्दी महसूस कराने के लिए बनाया गया है?
ये तरीका तो वाकई काम का लग रहा है, नाने लायक है।
और ये भी याद रखना जरूरी है कि सारे फेक हाईटेक डीप फेक नहीं होते। चीप फेक, यानी सस्ते और आसान तरीकों से बनाए गए फेक भी बहुत चलते हैं।
चीप फेक
जैसे
जैसे
किसी वीडियो को धीमा कर देना, पुरानी तस्वीर पर नया गलत कैप्शन लगा देना या वीडियो को संदर्भ से हटाकर पेश करना। व्हाट्सएप पर ऐसी चीजें भरी पड़ी हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल, हमें इनके प्रति ज्यादा सावधान रहना होगा। और हाँ, अपनी तस्वीरें ऑनलाइन शेयर करते हुए भी सोचना होगा,
क्योंकि उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है।
बिल्कुल, और समाज के स्तर पर हमें सोशल मीडिया कंपनियों से ज्यादा जिम्मेदारी की मांग करनी होगी।
हाँ, जैसे AI से बनी सामग्री पर साफ लेबल लगाना, ताकि पता चले कि असली नहीं है।
गलत और नुकसानदेह जानकारी को फैलने से रोकने के लिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।
और हमें ऐसे कानूनों की भी जरूरत है जो धोखाधड़ी या गैर सहमति वाली पोर्नोग्राफी जैसे गलत इस्तेमाल को रोके, पर कला, व्यंग या अभिव्यक्ति की आजादी को नुकसान न पहुंचाए।
संतुलन जरूरी है।
बिल्कुल, और सबसे जरूरी बात, जैसा फरीद बार बार कहते हैं, मीडिया साक्षरता। स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिस में, घरों में हमें सीखना और सिखाना होगा कि जानकारी को कैसे परखें, फेक न्यूज को कैसे पहचानें,
अपने पूर्वाग्रहों को कैसे समझें।
हाँ, ये सिर्फ सरकार या स्कूलों का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। शायद यही हमारा सबसे बड़ा बचाव है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यही रही कि तस्वीरों से छेड़छाड़ कितनी पुरानी है। मतलब ये कोई नई समस्या नहीं, बस AI ने इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और लायर्स डिविडेंड का विचार सच में डराता है कि हम सच पर ही शक करने लगे। ये बहुत गंभीर बात है।
और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि फरीद नाउम्मीद नहीं करते। वो खतरा बताते हैं, लेकिन एक रास्ता भी दिखाते हैं। ये उम्मीद जगाता है कि अगर तकनीक, नीतियां, प्लेटफॉर्म और हम सब,
हाँ हम सब
मिलकर कोशिश करें तो इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनका मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच पर जोर देना सबसे ज्यादा जरूरी और अमल करने लायक लगता है। यहीं पर हम सबका रोल आता है।
जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस रफ्तार से AI बढ़ रहा है, उस भविष्य के बारे में सोचिए जब शायद हम अपनी यादों पर भी पूरी तरह भरोसा ना कर सकें।
ये गहरा सवाल है।
क्या होगा अगर कोई हमारे अतीत की घटनाओं के नकली पर बिल्कुल असली दिखने वाले वीडियो या तस्वीरें बनाकर हमें दिखाएं? ये सिर्फ समाज की सच्चाई का सवाल नहीं रहेगा, शायद हमारी अपनी पहचान और याददाश्त का सवाल बन जाएगा। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।